लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, हम फ्रतेल्ली तुत्ती के दूसरे अध्याय एक अपरिचित भले सामारी के दृष्टांत की चर्चा का समापन करेंगे, जहां हमने यीशु के इस दृष्टांत के आधार पर सामाजिक जीवन का जिक्र करते हुए अपने में एक परिवर्तन लाने और सामाजिक जीवन में बदलाव लाने की आशा करते हैं। अपने विगत प्रसारण के अंत में हमने इस बात की चर्चा की कि यीशु हमें अपने को उन लोगों के लिए उपलब्ध कराने को कहते हैं जिन्हें हमारी सेवा की जरूरत है, चाहे वे हमारे समाज से ताल्लुकात रखते हों या नहीं। इस संदर्भ में वह समारी उस घायल यहूदी का एक पड़ोसी बनता है। उसकी सेवा करते हुए वह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं के परे जाता है। अपने दृष्टांत में यीशु कहते हैं, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। दूसरे शब्दों में, दुख दर्द की परिस्थिति में वे हमें अपनी विभिन्नताओं से परे जाने की चुनौती देते हैं। वे हमें बिना सवाल जवाब किए दूसरों की मदद करने को कहते हैं। श्रोताओं, दृष्टांत अपने में विचलित करने वाला है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि वह घायल व्यक्ति अपने में यहूदी है, जबकि रास्ते में रुककर सेवा करने वाला एक सामारी। यह विस्तृत व्याख्या प्रेम पर चिंतन करने हेतु हमें प्रेरित करता है, जो सारी मानवता को अपने में आलिंगन करना है। समारी उस प्रांत में रहते थे जहां अख्रिस्तीय क्रियाकलापों को व्यवहार में लाया जाता था। यहूदियों के लिए वे सारी चीजें अशुद्ध और भयावह थीं। वास्तव में यहूदियों के एक प्राचीन लेख के अनुसार, जो सामारिया प्रांत का हवाला प्रस्तुत करता है, अपने में घृणित समझा जाता था। वहाँ के लोगों को मनुष्य की संज्ञा तक नहीं दी जाती थी। उन्हें शेखेम की मूर्ख जनता से संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि यीशु का एक सामारी नारी से पानी की मांग करने पर वह उन्हें कहती है, एक यहूदी होकर आप कैसे एक सामारी नारी से पानी की मांग करते हैं। यीशु का तिरस्कार करने वाले उनके ऊपर एक सबसे घृणित आरोप अबदूत और एक सामारी होने का लगाते हैं। एक सामारी नारी और एक यहूदी का यह मिलन अपने में एक बड़ी प्रतिरोधी घटना है, जो हमारे वैचारिक हेर फेर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है और हमें सीमाओं के पारे जाने की चुनौती देता है। यह प्रेम की हमारी बुलाहट को एक वैश्विक आयाम प्रदान करता है, जो सभी पूर्व ग्रहों, सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सीमाओं और तुच्छ चाहों के परे जाता है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर
श्रोताओ, दूसरे अध्याय के अंत में संत पापा अंततः कहते हैं कि मैं सुसमाचार के उस भाग का जिक्र करना चाहूंगा जो हमें कहता है, मैं परदेशी था और तुमने मेरा स्वागत किया। यीशु ख्रिस्त इन शब्दों की घोषणा करते हैं क्योंकि उनका एक खुला हृदय है, जहां वे दूसरों की मुसीबतों और दुखों को देखकर अपने में प्रभावित होते हैं। संत पौलुस इस बात को रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, आनंद मनाने वालों के संग आनंदित हों और विलाप करने वालों के संग विलाप। जब हमारा हृदय इसके योग्य बनता है तो हम अपने को दूसरों के संग सहभागी करते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि वे कहां से आते और उनका जन्म कहां हुआ है। इस प्रक्रिया में हम दूसरों को अपने शरीर के अंग की भांति देखते हैं। ख्रिस्तियों के लिए यीशु के शब्दों का अर्थ अपने में और भी अधिक गहराई तक जाता है। वे हमें अपने को उन लोगों में देखने और पहचानने को विवश करते हैं जो परित्यक्त भाई बहनों के रूप में हैं, जो अलग कर दिए गए हैं। विश्वास में वह बेशुमार शक्ति है जिसके द्वारा हम दूसरों के सम्मान हेतु अपने को प्रेरित और संलग्न होता पाते हैं, क्योंकि इस रूप में हम इस बात को जानते हैं कि ईश्वर हर एक नर और नारी को अपने अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे उसकी पूरी मानवता का सम्मान करते हैं। हम सभी उसी तरह इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने हम में से हर किसी के लिए अपने रक्त को बहाया है और कोई भी उसके वैश्विक प्रेम के दायरे से परे नहीं है। यदि हम उस प्रेम की उत्पत्ति तक जाएं जिसके द्वारा हम प्रेम किए जाते, तो यह हमारे लिए त्रित्वमय ईश्वर का जीवन है। हम त्रिएक दिव्य ईश्वर के एक समुदाय को पाते हैं जो मानव समाज की शुरुआत और उसके चरम सीमा का केंद्र बिंदु है। ईश शास्त्र इस वृहद सच्चाई पर अपना समृद्ध चिंतन जारी रखता है। संत पापा कहते हैं, इस तथ्य के प्रकाश में मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि क्यों कलीसिया ने स्पष्ट रूप से गुलामी और हिंसा के विभिन्न रूपों की निंदा करने में इतना समय लगाया। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ हम आध्यात्मिकता और ईश शास्त्र में एक उन्नत विकास को देखते हैं, हमारे लिए कोई बहाना नहीं रह जाता है। इसके बावजूद बहुत से लोग हैं जो अपने में यह अनुभव करते या उनका विश्वास उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे विभिन्न तरह के निम्न और हिंसात्मक राष्ट्रवाद, परदेशी से भय और घृणा, साथ ही उनसे दुर्व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जो उनसे भिन्न है। विश्वास और मानवता जो हमें प्रेरित करता है, इन प्रवृत्तियों का सामना करने हेतु एक महत्वपूर्ण भावना को बनाए रखता, साथ ही जब कभी वे अपना सिर उठाते हों, हम उनका प्रत्युत्तर देने हेतु सदैव अपने में तैयार रहें। यही कारण है कि हम अपने धर्म शिक्षा और उपदेशों में सीधे और स्पष्ट तौर पर सामाजिक जीवन के अर्थ, आध्यात्मिकता के भ्रातृत्व में आयाम, हर मानव के अपरिहार्य सम्मान पर विश्वास और भाई बहनों के रूप में हमारा एक दूसरे को प्रेम और स्वीकार करने की हमारी महत्वपूर्णता पर जोर देने की आवश्यकता है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्लि तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना तू जीवन में,
रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना तू जीवन।
का नहीं, दुनिया में उसका नाम है।
अपनी बड़ाई जो करता नहीं, दुनिया में उसका नाम है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के जीवन एवं उपलब्धियों के स्मारक सेवा सम्मान में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संदेश भेजा है तथा ईश्वर के सभी बच्चे बच्चियों को प्रोत्साहन दिया है कि वे शांति के निर्माता बने। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन और उपलब्धियों को सम्मानित करने वाले स्मारक सेवा को रेखांकित करने हेतु संत पापा फ्रांसिस ने समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर किंग का सभी लोगों के प्रति सौहार्द एवं समानता के लिए उनके शांतिपूर्ण कार्यों की याद की है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन और विरासत पर 18 जनवरी को प्रिय सामुदायिक स्मरणीय सेवा सप्ताह के उत्सव का समापन हुआ। संत पापा ने अपने संदेश में उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिवादन किया है एवं उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, आज का विश्व जो सामाजिक अन्याय, विभाजन और संघर्ष का बहुत अधिक सामना कर रहा है, जो सार्वजनिक कल्याण को साकार होने नहीं देता, डॉक्टर किंग का स्वप्न सभी लोगों के लिए सौहार्द एवं समानता का था, जिसको उन्होंने अहिंसा एवं शांतिमय तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की, जो हमेशा बना रहेगा। संत पापा ने अपने प्रेरितिक विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती का हवाला देते हुए कहा है, हम प्रत्येक जन नहीं बांटने बल्कि एकता लाने के द्वारा शांति के निर्माता बनने हेतु बुलाए गए हैं। घृणा को बुझाने और उससे पकड़े नहीं रहने के द्वारा वार्ता के रास्ते को खोलने के लिए बुलाए गए हैं। इस तरह हम अपने आप को सर्वशक्तिमान ईश्वर के संतान के रूप में साझा गरिमा की सच्चाई में दूसरों की तरह नहीं बल्कि पड़ोसियों की तरह देखेंगे। इस स्वप्न को हर एक दिन साकार करने के प्रयास के द्वारा ही हम न्याय एवं भाईचारापूर्ण प्रेम पर निर्मित समुदाय के निर्माण हेतु एक साथ कार्य कर पाएंगे। संत पापा ने अपने संदेश के अंत में स्मारक सेवा उत्सव में उपस्थित सभी लोगों पर प्रज्ञा और शांति के दिव्य आशीष की कामना की है। संत पापा फ्रांसिस ने एक वर्चुअल सभा में भाग ले रहे वेनेजुएला के धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को संबोधित करते हुए वीडियो संदेश में उन्हें संबोधित किया है तथा सभा के महत्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि यह प्रेरितिक भ्रातृत्व की भावना से अपने प्रेरिताई के अनुभव, अपने परिश्रम, अपनी अनिश्चितताओं, साथ ही साथ कलीसिया के सदस्य होने एवं इसके कार्य जो प्रभु का कार्य है उससे आगे ले चलने की दृढ़ता को साझा करने का समय है। संत पापा ने अपने संदेश में संत मार्कुस रचित सुसमाचार के उस पद की याद दिलाई है जो बतलाता है कि यीशु द्वारा प्रेरिताई के लिए भेजे जाने के बाद प्रेरित किस तरह वापस लौटते और उनके चारों ओर जमा होते हैं। वे उन्हें बतलाते हैं कि उन्होंने किस तरह मिशन को पूरा किया तथा यीशु उन्हें निमंत्रण देते हैं कि वे उनके साथ एक निर्जन स्थान में कुछ देर विश्राम करने आएं।
सन पापा ने कहा, कलीसिया के लिए हमारा प्रेरित होना इस वर्तमान परिवेश में हमसे इस तरह कार्य करने की मांग करता है। हम अकेले एकाकी में आत्मनिर्भर होकर छिपी योजनाओं के साथ कार्य नहीं कर सकते। यह हमेशा आवश्यक है कि हम यीशु की ओर लौटें, जिसके लिए हम ठोस भाईचारा में एक साथ जमा होते हैं, ताकि इस दृढ़ता से उन्हें एक दूसरे को बतला सकें कि यह प्रभु का कार्य है जिसमें हमने क्या किया है और क्या सिखलाया है। संत पापा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण यह सभा वर्चुअल रूप में हो रहा है, जिसका उद्देश्य है उन लोगों का एक साथ आना जिन्होंने साक्ष्य देने और ईश्वर की विश्वासी प्रजा के लिए प्रभु के पितृत्व का मिशन प्राप्त किया है। संत पापा ने उन्हें दो सिद्धांतों की याद दिलाई जिसको उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और जो कलीसिया के विकास की गारंटी देता है। यदि हम पड़ोसियों के प्रति प्रेम और एक दूसरे की सेवा के प्रति वफादार रहते हैं, ये दो सिद्धांत यूखरिस्तीय संस्कार से जुड़े हैं जो प्रेम एवं सेवा करने की शिक्षा देते हैं। संत पापा ने उन्हें स्मरण दिलाया कि वे अपने भाई बहनों के सेवक हैं और उन्हें विनम्र सेवक बनना है, क्योंकि यीशु भेजते और याद दिलाते हैं कि सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना ही उनसे बड़ा जो उन्हें भेजते हैं, खासकर उन लोगों को साथ और समर्थन देने के लिए जो वंचित हैं, बहिष्कृत हैं और इस समय संकट की स्थिति में हैं। संत पापा ने वेनेजुएला के धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को निमंत्रण दिया कि वे आनंद एवं दृढ़ता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ें, प्रभु एवं उनकी प्रजा के लिए अपने आप को नवीकृत करें। तब संत पापा ने उनकी सभी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया तथा वेनेजुएला की कलीसिया के मिशन को आगे ले चलने हेतु अपना सामीप्य एवं अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए उन्हें कोरोमोटो की माता मरियम और संत जोसेफ की मध्यस्थता को सपोर्ट किया। और संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट संदेश में ख्रिस्तीय एकता को प्रोत्साहन देते हुए लिखा, यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनसे संयुक्त रहें ताकि प्रचुर फल ला सकें। प्रभु के साथ संयुक्त रहने का अर्थ है अपने आप से बाहर निकलने का साहस करना, ताकि हम दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दे सकें और दुनिया में ख्रिस्तीय साक्ष्य प्रकट कर सकें। उधर कारितास इंडोनेशिया पश्चिमी सुलावेसी प्रांत में भूकंप पीड़ितों की मदद मकासर महाधर्म प्रांत के साथ मिलकर कर रही है। इंडोनेशिया की कैथोलिक कलीसिया का सामाजिक और विकास विभाग पश्चिमी सुलावेसी प्रांत में पिछले सप्ताह आए भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद हेतु उनके पास पहुंच रही है। भूकंप में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई है एवं हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 15 जनवरी को 6.2 तीव्रता से आए भूकंप ने सुलावेसी के मामुजो शहर और माजेने जिला में बहुत अधिक कहर भर पाया है। राष्ट्रीय खोज एवं राहत एजेंसी के अनुसार मामुजो में 73 लोगों की मौत हुई है और माजेने में 11 लोग मरे हैं। कहा गया है कि करीब 20,000 बचे हुए लोगों को दूसरे स्थानों पर शरण दी गई है। मकासर महाधर्म प्रांत के कारितास के अध्यक्ष फादर बेर्नार्ड ने कहा कि उनका दल मामुजो में सहायता सामग्री का वितरण कर रहा है और उनका मिशन स्टेशन जल्द ही माजेने जिला में भी सहायता प्रदान करेगा। पिछले सितंबर से बेल्जियम के लिए जिधम प्रांत ने समग्र पारिस्थितिकी के लिए एक संदर्भित आंकड़ा प्रस्तुत किया है जो संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी के सामाजिक एवं पर्यावरण चिंतन से प्रेरित है। बेल्जियम के लिए जिधम प्रांत में 2017 में स्वयंसेवकों के एक दल का गठन किया गया था जिसका नाम है परिवर्तन काल में ख्रिस्ते। यह दल धर्म प्रांत स्तर पर कार्य कर रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।